जय राधा माधव जय कुंज बिहार जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हाँ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन हो यशोदनंदन ब्रज जन रंजन हो यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी यमुना तीर यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी यमुना हाँ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. कार्तिक मास की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, बिताए गौर प्रमाण और गौरी श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 और श्लोक संख्या है 20 हमारे प्रयास कीजिए. आत्म आनंद अनुभूतया एवा न्यस्त शति उभर्मे नमः ऋषिकेशाय मते नमः ते अनंत मूर्तये. आत्मानन्दानुभूतये नमस्ते शक्तिमूर्मते नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनंतमूर्तये. आत्मानन्दानुभूतये नमस्ते शक्तिमूर्तये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनंतमूर्तये. आत्मानन्दभूतये नस्तशक्तयुर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनंतमूर्तये.
धन्यवाद श्रद्धा. आत्म आनंद आपके अपने आनंद की अनुभूतया अनुभूति से एवं निश्चय ही निहस्ता परित्यक्त शक्ति उमरे भौतिक शक्ति माया की लहरें नमः नमस्कार ऋषिकेशाय
इंद्रियों के परम नियामक को महते परमात्मा की को नमः नमस्कार ते तुझको अनंत असीम मूर्तये जिनका विस्तार प्रकाश अपने व्यक्तिगत आनंद का अनुभव करते हुए आप सदैव भौतिक प्रकृति की लहरों के परे हैं। अतः हे ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप इंद्रियों के परम नियामक हैं और आपके रूप के प्रकाश अनंत हैं। आप परम महान हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस श्लोक में जीवात्मा का परमात्मा से अंतर बताया गया है। बद्र जीव तथा ईश्वर के रूपों में अंतर है, क्योंकि ईश्वर आनंदमय है किंतु जीव सदैव ताप त्रय के अधीन रहता है। परमेश्वर तो सच्चिदानंद विग्रह है, वे अपने आप से आनंद प्राप्त करते हैं। उनका शरीर दिव्य तत्वमय है, किंतु बद्र जीव को अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां सताती रहती है। बद्धजीव सदैव आसक्ति तथा विरक्ति से पीड़ित रहता है, जबकि ईश्वर इस व्यर्थता से मुक्त रहते हैं। ईश्वर समस्त इंद्रियों का स्वामी है, जबकि जीव इंद्रियों द्वारा संचालित होता है। ईश्वर विराट है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्मतम है। जीवात्मा को माया की लहरें बांधे रहती है। किंतु परमेश्वर समस्त कर्मों तथा बंधनों से परे है। परमेश्वर के अनेकानेक विस्तार है। अच्युतम अनादि अनंत रूप, किंतु जीवात्मा का केवल एक रूप होता है। इतिहास बताता है कि कभी कभी जीवात्मा योग शक्ति से 8 रूपों में विस्तार कर सकता है, किंतु ईश्वर के विस्तार अनंत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि श्री भगवान की देहों का कोई वार पार नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित। ये राजा चित्रकेतु की कथा शुरुआत हुई थी। इससे पहले अगर आपको याद हो तो वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा था, और वृत्रासुर एक बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, जिनको मारने के लिए इंद्र जो है भगवान के पास भी गए और वो मर नहीं रहे थे उनसे। तो भगवान ने उनको रास्ता दिखाया, अपनी कृपा दी, तब जाके वृत्रासुर मरे। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद शुभदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी की जिज्ञासा को कि भाई वृत्रासुर असुर थे पर भगवान के भक्त कैसे थे? इतने बड़े भक्त, इतने सारे चैप्टर्स में उनका गुणगान हो रहा है, इतनी सारी क्वालिटीज हैं। इवन इंद्र के साथ युद्ध करते हुए भी वो बीच बीच में क्या करते हैं, प्रवचन करते हैं और इंद्र को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए, और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से मुझे मार दो, क्योंकि क्या होगा उससे, शरीर का त्याग करते ही, क्योंकि मेरी चेतना इस समय भगवान में लगी हुई है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान के धाम जाऊंगा। तो बहुत ईगर थे मरने के लिए, और उनको ये भी समझाया कि तुम जैसे लोग जो होस्ट के लिए लड़ रहे हैं, आपको पद चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसका कुछ बहुत, आप जीत भी गए तो फायदा नहीं है इसका। तो बहुत सुंदर शिक्षाएं उन्होंने दी, और इस तरह की शिक्षाएं सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एक असुर व्यक्ति के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज कैसे हैं, इतना अच्छा भक्त कैसे हैं। तो फिर शुभदेव गोस्वामी जी ने एक कथा सुना चित्रकेतु। चित्रकेतु एक राजा थे जिनकी 1 करोड़ रानियां थी, और राजा थे, 1 करोड़ रानियां थी। ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो नपुंसक थे, उनकी भी संतान भी रानी बनाकर लाए, सोचा कि शायद इससे संतान होगी, शायद इससे होगी। भाग्य ऐसा था क्या कि किसी से भी संतान नहीं। टेबल लोग लॉटरी खेलते हैं तो उसमें कुछ नंबर जब लेते हैं तो कुछ तो उसमें से नंबर लग जाता लोगों का, नहीं इतने सारे नंबर से उनसे कईयों को मिल जाता है। और एक करोड़ समझ लीजिए उन्होंने लॉटरी खेली, एक करोड़ रानियां बनाई, लेकिन उसमें से किसी की भी संतान नहीं। तो राजा चित्रकेतु वो परेशान है, पर हो भी क्यों ना, एक करोड़ देवियों को पालना, विवाह करना, लेकिन संतान ना होना, तो सबको राज्य में रखना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने सबको रखा और संतान दिल की दुखी थे क्योंकि संतान नहीं हो रही। सुशी राधा करण भगवान तो वो परेशान थे। और इस वजह से क्या हुआ, मुनि अंगिराज जी ने एक बार क्या किया, वहां पर विजिट किया उनके राज्य में और उनको दिखाया। उनको जो भक्त लोग होते हैं बता रहे हैं कि वो तो जब गृहस्थों के घर में जाते हैं तो उनका उद्देश्य होता है, ये गृहस्थ लोग जब भक्तों के घर में बुलाते हैं तो उसके पीछे भी उद्देश्य होता है। जब गृहस्थ लोग भक्तों को घर में बुलाते हैं तो उद्देश्य यह होता है कि भक्त लोग आए, हमें सेवा का मौका दें, हमें अपनी वाणी से कुछ भक्ति के विषय में, जीवन के उद्देश्य लक्ष्य के विषय में बताएं, ताकि हम लोग जो अपने जीवन को जीने में भौतिक संगति के कारण जो दूषण हमारा हो रहा है उससे बाहर निकल सके, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सके। तो ये उद्देश्य होता है भक्तों को घर बुलाने का। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्तंभ में बताया गया जिन परिवारों में भक्त लोग नहीं आते, साधु लोग उस वृक्ष के समान जिस वृक्ष पर अजगर रहते हैं और वो सूखा हुआ होता है। तो भक्त लोग जब जाते हैं, जैसे अंगिरा मुनि गए जब राजा के पास, तो ज्ञान देना चाहते थे, इस उद्देश्य से गए। लेकिन इतने शोक में थे वो राजा, उन्होंने अपनी चिंताएं रख ली उनके आगे। कई बार भक्त लोग भक्तों के आगे अपनी सारी चिंताएं रखते थे, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो स्थिति चल रहा है, वो नहीं चल रहा, बच्चे कहना नहीं मानते। तो फिर भक्त लोग बेचारे फिर उसी तरह का सोल्यूशन देकर आ जाते हैं, बहुत ही समस्याओं से निकल रहे हैं। लेकिन भक्त लोग जो देते हैं वो परमानेंट सोल्यूशन ही देते हैं, किस तरह परमानेंटली उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा ही तो बड़े शोकाकुल हैं, ये तो एक करोड़ धर्म पत्नियों के होते हुए भी एक भी संतान नहीं है, वो शोक में। तो उन्होंने उनको रास्ता बताया और इस प्रकार उनकी संतान भी हुई। उसका नाम क्या था, हर्ष शोक। उन्होंने बताया, शुरू में बताया कि जो तुम्हारी संतान होगी वो तुम्हारे हर्ष का कारण बनेगी और वही संतान आपके शोक का भी कारण बने। उन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं स्टेटमेंट को, संतान तो होगी ना, क्योंकि उनको क्या लग रहा था, बगैर संतान से होना अगर मान लो बिगड़ जाएगी ना, इसी बात का शोक होगा ना, वही निकम्मी हो जाएगी तो क्या दिक्कत, अगर संतान तो होगी ना। अंग और वेद के केस में भी ऐसे पहले संतान नहीं थी, अगर संतान थी तो उन्होंने कहा इससे तो इतनी बिगड़ी हुई थी, वो कहते इससे तो ना होती तो अच्छा, इससे पिछले अध्याय में। अभी ये क्या सोच रहे, बिगड़ भी गई बट एक करोड़ बीवी है, संतान एक से भी नहीं है, एक हो रही है, उसका हर्ष उल्लास इतना था कि पूछो मैं, चलो एक तो होगी, फिर चाहे बिगड़ भी गए क्या करेगा, जुआ खेलना शुरू कर देगा, शराब पिएगा, अवैध संबंध करेगा, मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगा, यही होगा ना, बट संतान तो है। इसकी पिछली वाली कथा सुना देना तो आपको वैराग्य आया था। तो उस केस में जो राजा अंग थे, वेन जो थे, उनके पुत्र थे, तो वो इतनी गंदी संतान थी, जैसे भगवान कृष्ण थे तो वो पड़ोसी में जहाँ मक्खन चुराने जाते थे शिकायतें आती थी, जिस जगह बहुत अच्छा लगता था, गोपियों को भी अच्छा लगता था जिनका मक्खन चुराया जाता था, ऐसी शिकायतें में तो कुछ मजे मजे आया आनंद। लेकिन जो वेन करके आता था वो क्या करता था, जिन बच्चों के साथ खेलता था उसको मार देता था, तुम्हें खेल खेल में मतलब 10 बच्चे खेल रहे हैं तो 2-3 बचते थे, ऐसा होता। तो ऐसी शिकायतें जब आएंगी तो क्या होगा, पिता सोचेंगे कि मैं अपने हाथ से गला दबा दूं। तो यहां पर केस थोड़ा चलता है, यहां पर उनको लग रहा है कि थोड़ी सी बिगड़ी तो जाएगी तो क्या लेते। तो हुई संतान और इतना हर्ष हुआ, इतने त्योहार मनाए गए, लेकिन क्या हुआ बताते हैं कि आगे चलकर क्या हुआ कि उनकी जो और रानियां थी उनको जेलसी हो, उनके हृदय में जो है मतलब उनको खुशी जो है अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब राजा केवल 1 करोड़ में से एक ही रानी पर ध्यान देते हैं, उन्हीं से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो सब रानियां इकट्ठी हुई और प्लान किया कि जो ये हमारे दुख का कारण है ना, कौन बच्चा जो हर्ष हो तो इसको जहर दे, जहर दे। और जब उसे शोक हुआ, जब बच्चा तो सो रहा था, रानी ने कहा बड़े देर अभी सोते हुए अपनी मेड सर्वेंट को भेजा, जाओ बुला के लाओ, उठा के लाओ। तो जब वो वहां गई तो क्या देखते हैं, बच्ची की आंखें ऐसे चढ़ी हुई है, खूब चिल्लाई, रो पड़ी। रानी वहां पहुंची, उसने देखा, वो रो पड़ी, सारी घर के लोग इकट्ठे हो गए, इतना शोक हुआ, राजा का तो हृदय विदीन हो गया, मतलब ऐसा शोक था कि बस मर नहीं रहे। तब जाके अंगिरा मुनि दोबारा नारद जी के, तब उन्होंने कहा हमने तो पहले ही बताया था कि संतान होगी इसका नाम ही हर्ष शोक है, ये आपका हर्ष का कारण बनेगा और उसके तुरंत बाद शोक का कारण। नारद जी ने इतनी कृपा करी, शोकाकुल पिता को देखकर उन्होंने उस बच्चे को दोबारा जीवित कर, और उस बच्चे ने भी प्रवचन किया उसको, कहते नारद जी ने कहा ये तुम्हारे माता पिता है, कहते कौन से वजह, मैं तो पता नहीं कितने कितने जन्म कभी की पतंग किस किस योनि में होकर आया हूं, हर एक में मेरी मम्मी पापा थे, तो भूल चुका था कौन से है। इतना सुंदर ज्ञान देकर गए, शरीर और आत्मा का भेद बताकर गए, जीवन का लक्ष्य बताकर गए, और इस प्रकार जब एक मृत व्यक्ति जीवित होकर वो चीजें बोले जो कि सच्चाई है, तो जो मटेरियल एनग्रॉस व्यक्ति है हमारे पास जिसे समझ नहीं आता, जैसे अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने पति में, अपने बिजनेस में प्यार है, अटैचमेंट है, उसको समझ नहीं आता ये सब शब्द कथाओं में कोई पदन, भागवतम कथा हो चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कथाएं सुनी जाती हैं क्योंकि घर में उस समय पे लोग चाहते हैं कि मैं घर में ना रहूं, इसलिए टाइम पास करने में गया। इन कथाओं से हम लोगों को अपने जीवन के लिए शिक्षा लेनी, हमारे साथ भी तो वही है, हम भी तो चित्र के थी की तरह है, हमें भी तो अपनी संतान से बहुत ज्यादा आसक्ति, जैसे पिछली बार कथा में हम लोग बात कर रहे थे कि कितने दुखी हैं वो लोग राजा चित्रकेतु जैसे जिनकी संतान नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये उनसे दुखी हैं जिनकी संतान है, उनको लगता है जिनकी है और बिगड़ी हुई है तो उनको लगता है कि इसकी तो ना होती तो अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संतान है लेकिन काम की है, कहना मानती है, तो ये और बड़ा दुख है। क्यों कहना मानती है, अच्छी संतान, नाम रोशन कर रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, इससे आपको मोह हो गया मेरा बेटा, और ये मोह किसका कारण बनता है, बार बार जन्म बढ़ापा विनष्ट नहीं करते। आपको अपने परिवार से आसक्ति हो गई और उस आसक्ति के कारण हम किसी परिवार में से चल देखना रहे उन लट से, तो एक बहुत वृद्ध माता की पूरा परिवार से जन्म मिला, उनको बताया कार्तिक महीने के बारे में। तो माता जी कहते बेटा मैं जो हूं ना सुबह से लेकर शाम तक चिंता में रहती हूं, क्योंकि मैंने पूरे परिवार को बताया कि माला कैसे करनी। कहते मुझे तो कुछ बता दो, मैं तो आप करते ही होंगे। कहते नहीं, मैं थोड़ा सा करती हूं या प्रयास करती हूं तो घर की चिंताएं बनी रहती हैं, उसने क्या कर दिया, चूल्हे पे गया रखा है, बेटा गया, घंटी कौन बजा रहा है, बेटा क्यों नहीं आया अभी तक, एक बार बेटी फोन पे बात करा दे। क्योंकि इतनी चिंता युक्त रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, हंसने इन सब परेशानी से कैसे मैं चिंता वो उन्मुक्त हूँ। ये दादी नानी टाइप की माता जी थी, मतलब वृद्ध में। तो मैंने तो कहाँ बैठती हो आप, कौन सा कमरा है? कहते यही ड्राइंग रूम में बैठती हूँ। मैंने कहा टीवी चला रखा आपने? कहते टीवी तो है नहीं। मैंने कहा यहाँ बैठ के सब कुछ दिखता है, ये अपने आप में टीवी तो है, बेल बज रही है, बहू क्या कर रही है, उस कमरे में फोन किया, ये क्या कर रहा है, समझ रहे? तो मैंने कहा आप अपना कमरा बदलो सबसे पहले, तो ऐसे अब जितनी उम्र होगी उसमें तो आपको ऐसे कमरे में जाना चाहिए जहाँ से सब दिखे ना। और उनके परिवार वालों को इंस्ट्रक्शन दी कि आप कोई खुशखबरी हो छोटी मोटी बता दे करो, लेकिन सारी चीजें बताना बंद करो, है ना। वो सुनती हैं तो कुछ ना कुछ चिंतन चलता है, तो इस तरह कुछ बताया। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है कि सुबह से लेकर शाम तक आंखें खुली हुई, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, संतान है, आसक्ति है उसके साथ, वो बढ़ रही है, ठीक है। और ये आसक्तियां हमको अंतिम समय में वैसी स्थिति में ला देगा और चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन नहीं होगा, चिंता लगी होती और चिंता से चिंता बिल्कुल मजबूत होती है। और जब वो चिंता भी होगी तो उससे पहले जिस चीज का चिंता कर रहे थे या चिंतन कर रहे थे उसकी वजह से फिर से हमें किसी न किसी परिवार में आना पड़ेगा। तो कई बार बिजली में संतान भी वैराग्य के कारण का इंच, आंखों का, इन हाथों का, इस बुद्धि का और मन का, इस भौतिक जगत में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जन्म लेने के बाद यही काम है कि भगवान का खाली गुणगान किया जाए, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं की चर्चा की। भोग और इंद्र तृप्ति इससे दूसरी योगियों में की जाती है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की योनि में होते हैं जी, तो वहां पर यही सब करते हैं भोग। और जब मनुष्य देह में आने के बाद भी भोग की चिंता खत्म नहीं होती तो उनको फिर नाना प्रकार की योनियों में इवन स्वर्ग तक भी भेजा जाता है। लेकिन ये जीवात्मा जो अपने आप को भोक्ता समझती है, क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है, वास्तव में जो स्वरूप है उसका, दास का, वो पूरी तरह कंटेमिनेटेड हो चुका है, दूषित हो चुका है, दास अब बॉस का रूप ले चुका है। उसको हर चीज भोगने का आनंद चाहता है, वो चाहता है कि मैं हर चीज को भोग। और इसी चीज को समझने के लिए कि हम शरीर से अलग हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई करना है, ये सारे शास्त्र दे गए, इतनी सुंदर सुंदर कथाओं की रचना की गई। नारद जी के पूरे जीवन में वो हर जगह प्रचार करते करते कितने कितने भक्तों को जो है प्रचार कर रहे हैं, शरीर और आत्मा का भेद बता रहे हैं। क्योंकि पूरा का पूरा जीवन हमारा अपने आप को देह मानकर और उसके आधार पर कार्य करने में लग जाता है, उसको संतुष्ट, उसको सुख देने के कारण, और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य देह में आने के बाद हर व्यक्ति का ये पहला धर्म है कि वो भगवान को ग्लोरीफाई करे, वो एक अच्छा भक्त बने। अगर वो अपने जीवन को इसी प्रकार जीता है जिस प्रकार के पशु योनि में जीता आया, या और लोग जो पशु योनि की तरह जी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि। कौन व्यक्ति कह सकता है कि इस जीवन को जीते हुए मैं पूर्णता सुख का अनुभव करूं? शारीरिक सुविधाओं को एकत्रित करने को सुख नहीं कहते, और ये हमेशा रहेगा भी नहीं। इसलिए जिज्ञासाएं करनी चाहिए। एक व्यक्ति था, वो जिज्ञासाएं करता था, उसके प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं देता। तो एक बार एक भक्त के पास गए, उन्होंने कहा मेरे को जिज्ञासाएं। कहा जिज्ञासाएं बोलने से पहले मैं आपके उत्तर दे दूंगा, लेकिन आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो आज तक उसके प्रश्न के उत्तर नहीं मिले थे, उसको लगा कि ये कुछ लग रहे हैं कि दे देंगे, तो कहते चलो मैं कीमत भी चुकाने को तैयार, जो बोलोगे लोग। तो कहते ठीक है, कीमत ये है कि आपको लगभग एक दो साल मेरे साथ रहना पड़ेगा, और जब तक मेरे साथ रहोगे तभी कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, और दो साल तक जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा पूरी तरह समर्पण। बड़ी मुश्किल लगी इस शब्द में, मुझे लगा पैसे मांगे दो साल मांगे, बट वो व्यक्ति जिज्ञासु था तो उसको लगा कि करना चाहिए, उसने कहा दो साल तक उस साधु के साथ रहने, सुबह दोपहर शाम जो साधु करते फॉलो करते, उनसे काम करवाते, शास्त्र पाते, हर चीज करते। दो साल जब पूरे हुए वो भूल भी चुका था, इतना सुंदर जीवन था। दो साल बाद साधु ने कहा तुम्हें पूरा हो, अब प्रश्न कर, प्रश्न तो है ही नहीं। सारी जिज्ञासाएं समाप्त, सारी टेंशन खत्म। कहां मैं उस जगत में था जहां पर इतना कलेश, इतनी कलह, इतनी समस्याएं, इतनी दिक्कत, मन विचलित रहता था। दो साल से आपके साथ जा रहा हूं, कोई समस्या नहीं, कोई मैच का स्कोर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। इतनी सुंदर सुंदर आपने सेवाएं करी, ये शास्त्र लिखवा, ये पढ़ा, ये सब करा, सारा कुछ पता चल गया। तो क्या करना है? तो ज्वाइन करना है। तब आ जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार कहने मतलब क्या है कि ये मनुष्य देह जो है इसलिए प्राप्त है, और अगर हम लोग इस देह का इस्तेमाल उसी तरह उस किसान की तरह करें जिसकी मर्सिडीज बैंक निकली थी काटरी में, और वो खेत जोत रहा था उससे, तो भी फायदा नहीं। हम लोगों को श्रीमद् भागवतम, भगवद्गीता इत्यादि जो ग्रंथ है, ये हमारे लिए हमारे प्राण होने चाहिए। नित्यम भागवत सेवा, किसी भी व्यक्ति को हर समय, जैसे अपने मोबाइल को सदैव चार्ज रखने के लिए या उस पर बात करते रहने के लिए आपको हमेशा चार्जिंग चाहिए। एक बार चार्ज करके आप हफ्ता नहीं चला। तो उसी तरह भक्तों को चाहिए कि सदैव भक्तों के संग में रहें, श्रीमद् भागवतम और भगवद्गीता का नियमित रूप से अध्ययन करें। देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि प्रभु जी हम ये करते हैं वो करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग सिंसियरली श्रीमद् भगवद्गीता और भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, नियमित रूप से साधुओं का संग कर रहे हैं, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने से रोक सके। कोई ऐसी माया है क्या? माया तो हमारे कंटेमिनेटेड प्रयास को देखती है और सब जाके डंडे मारती है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को, या जो सच में आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, चाहता का मतलब इच्छा आ गई, इच्छा डेवलप कर ली, उसने चाह उत्पन्न कर ली सेल्फ रियलाइजेशन की, ये भक्ति करने की, तो कोई भौतिक चीज उसको नहीं रोक सकती। इसमें कभी बताते ना भक्ति में या तो आगे बढ़ा जाता है या नीचे जाया जाता है। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो अंधकूप में, अंधकूप का मतलब जो बेसलेस वेल है जिसमें गिर रहा है बट आवाज नहीं आ रही, कितना नीचे जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो सही चेतना में तो उसका एडवांसमेंट बहुत तेजी से, बाहरी आवरण या बाहरी भौतिक आकर्षण भी उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुलना में परम विजय से कृष्ण संकीर्तन, इसकी विजय होनी है और हो भी क्यों ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो ये सृष्टि बनाई है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही कि जो आत्माएं विद्रोह कर इस भौतिक संसार में कई कई जन्मों से संघर्ष कर रही हैं उनको मैं वापस बुलाऊं। इसीलिए तो भगवान को बार बार अवतरित भी होना पड़ता है और उन अवतरणों का कारण होता है कि भगवान उन जीवात्माओं को अपनी लीलाओं से आकर्षित कर उनको अपने धाम में, मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं सब जीवात्माओं को आकर्षित करूं। हमारी कंडीशनिंग के कारण या गलत इच्छाओं के कारण हम जाना नहीं चाहते तो गलती भगवान की, ये शास्त्र की नहीं, किसकी है? हमारी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में वो इच्छा उत्पन्न हो भगवान को सर्व करने की, भक्तों को सर्व करने की या भगवान के धाम वापस जाने की, वो इच्छा उत्पन्न। सारा का सारा खेल इच्छाओं का ही है। अगर हम लोगों ने इस जीवन के रहते भगवान को प्रेम करने की इच्छा डेवलप कर ली तो इस संसार की कोई ताकत किसी भी व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने से रोकनी। हम लोग अपने हृदय में हाथ रखते हैं और उसकी सबसे पहली इच्छा को देखें तो पता चलेगा, अरे मेरी सबसे पहली इच्छा तो भगवान के धाम जाने की है ही नहीं। मेरी प्रथम इच्छा तो क्या है? सब ठीक रहे, ये सब चलता रहे। तो सेकेंडरी क्या है? कि भक्ति भी होती है। तो इच्छाओं को देखें, इच्छा तो हम लोग डेवलप कर ही नहीं रहे और फिर सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो करेगा भगवान करेगा। हाँ तो करेंगे, ये यथा माम प्रवचन से सांस सेवा बजा रहे। मन जो इच्छाओं का केंद्र है वो ध्यान जनरेट होती है, बस किसको काबू करना है, इसका मालिक बनना है। हर चीज को बहुत ही, हर इच्छा को बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज करना है, ये तो करना है बस। ये इच्छाएं ही तो हैं जो किसी भी व्यक्ति को पाप कर्मों में रत करता है या भक्ति में रत करता है। इसलिए भगवद गीता में उसको शत्रु भी कहा गया और मित्र भी कहा गया। तो जब कभी भी इच्छा डेवलप होती है हृदय में, जब गलत इच्छाएं डेवलप होती हैं तो तुरंत अपने मन को भगवान के चरणों में, भगवान के रूप में, भगवान को प्रार्थना करने में इन्वेस्ट कर देना चाहिए उसी तरह, ताकि उस फेज से जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है उसमें भगवान तुरंत हमारी रक्षा करें और फिर बार बार प्रार्थना मन को डायरेक्ट करें। तो होगा क्या, जब मन हमारा इस प्रकार हमारे कंट्रोल में होगा, हमारी बुद्धि के अंडर में होगा और बुद्धि वो जो शास्त्र से जो नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जो लोग सच में जो लोग नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तो हर ग्रंथ के हर पेज में यही समझाने का प्रयास किया हर जगह कि किस प्रकार हमको शरीर और आत्मा के भेद को समझना है और जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। तो बार बार हैमरिंग जब होगी ना तो बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा भगवत प्रेम, नेचर में आ जाएगा कृष्ण से व्यवहार। तो भक्तों को चाहिए कि वो नियमित रूप से अध्ययन करना शुरू करें, नियमित रूप से भक्ति के कार्यक्रमों को बनाना शुरू करा दीजिए। इसके संस्कार इतने गहरे छप जाएं, जिस प्रकार एक जिस वृद्धा स्त्री का हम लोग आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसने अपने 50 साल 60 साल 70 साल अपने परिवार की देख रेख में लगा डाले और अंत में उसको केवल परिवार का ही चिंतन हो रहा है, जबकि वो फोर्सफुली भगवान का चिंतन करने का प्रयास करती है। जब हो सकता है दिन में 2 मिनट या 5 मिनट पूरा इच्छा करती है कि हाँ करूं, लेकिन इतना वेग है उन संस्कारों का जो उसने पूरे जीवन अर्जित किए, तो पिछले जन्मों के कोई संस्कार थोड़ी याद कर रही है, इसी जन्म में जो 70 साल में एक्यूमुलेट किए हैं उन्हीं का तो चिंतन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी भी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर हम लोग अपने आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जीवा के द्वारा हम भगवान की सेवा शुरू करें, फिर यही संस्कार छपेंगे और फिर अंतिम समय में जिस प्रकार ना चाहते हुए भी उनको पूरे परिवार की चिंताएं सता रही हैं, उसी प्रकार भक्तों को भी अंतिम समय में ना चाहते हुए कृष्ण याद आएंगे। गोपियां जो कि भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं प्रेम में, जब कभी कृष्ण से झगड़ा होता है रूठ जाती हैं, रूठने पर भी कृष्ण देखते हैं, दूर चली जाती हैं तो भी विरह में कृष्ण के दर्शन होते हैं, उनके चिंतन होते हैं, जो परेशान हो जाती हैं कि जिससे हमको लड़ाई करनी है वो दिमाग में क्यों है, तो फिर मेडिटेशन पर बैठती हैं। क्या मेडिटेट करती है कि कृष्ण अब हमें दिखाई न दे, बताइए वही वाली स्थिति है जो दूसरी स्थिति है। तो इस प्रकार जो है भगवान फिर हृदय में छप जाएंगे, बहुत आसान होगा भगवान को, भगवान को दर्शन करें। लेकिन हम तो दिवाली है आज, हम तो दिवाली मनाएंगे, पटाखे छोड़ने हैं, हम तो हैप्पी दिवाली बोलेंगे, जी लोग मैसेज आया कर हमें दिवाली की शुभकामना, हम भी वापस भेज रहे हैं, हमने कहा हम हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को ये शुभ देता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ये शुभ देता है, मात्र शब्द रह गए हैं, बस फिर भी कोशिश करें। लेकिन कोई भी व्यक्ति ना देने वाला, विशेष देने वाला सुखी है, ना जिसको दे रहा वो सुखी, हम लिखा नीचे कि जब तक व्यक्ति अपने संबंध को कृष्ण से ना जान ले तब तक इस संसार में सुखी नहीं है, रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब रियलाइज कर लिया तो फिर सुख आनंद ही आनंद कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। आज के प्रपट में जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ चीजें, भगवान की क्वालिटीज बता रहे हैं और जीवात्मा का भेद बता रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग सदैव आदि दैविक, आदि भौतिक और आत्मिक कलेशों से परेशान रहते हैं, जबकि भगवान इन सबसे परे है। भगवान क्या, भगवान के शुद्ध भक्त इन सब चीजों से परे। हम लोग इस संसार में इन्हीं कलेशों के बीच में पूरा जीवन बिता देते हैं, इन्हीं की चिंता करते हैं, जबकि ये सारी चिंताएं इस पूरी कथा के द्वारा हम क्या समझते हैं कि सारी योजनाएं भगवान के द्वारा ही बनाई जाती है ना। और जो भक्तों के साथ भी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं या शारीरिक समस्याएं आती हैं, तो भगवान के भक्त उसको किस रूप में लेते हैं, ये तो भगवान की कृपा है। भक्तों की बात करें जो भी स्टार्टिंग में है और या बिल्कुल जो नहीं है, तो वो तो भगवान को कोसने लग जाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब भी किसी पर दुख आते हो कोसता है भगवान, मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि रूपा जी जगह प्रकट में लिख रहे हैं कि अगर कभी किसी भक्त के साथ भी ऐसी घटना हो जाए और उसके हृदय में भी भगवान के प्रति कहीं कुछ पेट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको चुपचाप सह लेना चाहिए और कुछ समय बाद उस घटना को जब आप दोबारा याद करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो मेरे फायदे के लिए, उस समय अगर ये हो जाता तो शायद कुछ और होता, लेकिन भगवान ने कैसे रक्षा करी उस इच्छा को पूरा ना करें।
तो कई बार लगता होगा भक्तों को या अरे वो अपॉर्चुनिटी आई वो छोड़ दी वो मिस कर दी है ना, लेकिन वास्तव में भगवान बड़ी रक्षा करते। तो हमें भगवान का सदैव धन्यवाद करना चाहिए, और अगर धन्यवाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये शायद द्वेष करेंगे, तो वही कारण तो है उसी की वजह से पनिशमेंट चल रही है हमारी संसार पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म। तो इसलिए प्रयास करें कि हम लोग सही प्रकार से दिवाली मनाएं। दिवाली मतलब पटाखे नहीं, दिवाली मतलब खाली वो सुंदर सुंदर लैंप नहीं, दिवाली मतलब गिफ्ट नहीं, उसने दिया ये दिया मैं तो ये सोच रहा था हमने उसको वो दिया उसने ये दिया, ये दिवाली नहीं है। ये दिवाली का मतलब बिजनेस लिंक को अच्छा करना नहीं, दिवाली इस चीज से होगी। दीपावली का मतलब कि भगवान श्री राम उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी सॉरी सीता जी ये सब हमारे हृदय में अवतरित हो हमारे शक्ति पर कहीं भी याद आते हैं श्री राम पूजा भी हम भी किसी करते हैं दिवाली समझ नहीं आता रिचुअल कर्मकांड का एक सीन है तो दो लोगों को बिठा दें जिनका वैसे भी आपस में संबंध में दिक्कत हो गई था पूजा कर तो कहने मतलब इतना अधिकार है तो न भगवान राम का स्मरण न भगवान कृष्ण का स्मरण अरे कृष्ण की भक्ति करेंगे जो कि सुप्रीम नारायण है तो लक्ष्मियां तो सहस्त्र उनकी सेवा कर ही रही क्योंकि वो अपने आप आएंगे अगर किसी को लक्ष्मी की भी कमी लग रही है तो ये कह रहे ध्यान नारायण है वहां लक्ष्मी आई जाएगी तो हमें लक्ष्मी नारायण जी या राधा कृष्ण की ही क्या करनी चाहिए पूजा करनी सीताराम की पूजा करनी तो दिवाली कहलाएगी। ये भौतिक संसार हम लोग हमेशा कंफर्टेबल चाहते हैं यहां पर कि सब कुछ कंफर्टेबल रहे हमारे साथ तो साथ में भक्ति भी चलते हैं। दिवाली का मतलब जब लोग बोलते हैं आशा करते हैं कि भाई हमको विशेष जल करें बट लेकिन होता क्या है हम चाहते हैं कि हमारा भौतिक जीवन भी सुख ढंग से चलता रहे और फिर थोड़ी बहुत भक्ति भी करते रहे लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि भौतिक परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती इसमें जैसे भी उथल पुथल जैसी मर्जी आए समय ऊपर नीचे जैसे मर्जी है लेकिन भक्ति की जो हमारी जिम्मेवारी है इस देह में आने के बाद उसमें कोई कमी नहीं आनी ठीक है ना। और जितनी भी उम्र हमारी हो गई है हम लोग अभी से यहां से इसी उम्र से अच्छा प्रयास करें तो ये कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स नहीं है कि इतने साल तो करना ही पड़ेगा तो जाके एडमिशन मिलेगा ऐसा नहीं। भक्ति में तो तत्परता चाहिए होती है लॉलेम चाहिए होता है ना। अगर कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र में भी समझ आ रहा है कुछ तो उसको वहीं पर होल हार्टेडली भगवान को समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। और कोई व्यक्ति बचपन से लगा है उसको इस बात का अहंकार है मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल होती है ठीक है ना। तो भगवान तत्परता देखते हैं या ईगरनेस देखते हैं भक्तों या वो इच्छा जिससे हम बात कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमारी भक्तियों को प्रोग्रेस होती है। नारद जी जो आज सबका उद्धार कर रहे हैं अपने संत से उनको पवित्र करकर वजह ये पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे नारद जी तो इनको भी बड़े पापड़ बेलने पड़े भक्तों की सेवा की थी उनको अवशिष्ट खाया था माता का देहांत हो गया छोटी उम्र में ही तो अकेले निकल के भक्ति गई और जब खूब ध्यान किया तो भगवान का दर्शन भी हुआ उनको और एकदम लुप्त हो गए खूब रोए खूब विलाप किया कि अब दोबारा कैसे दर्शन होगा भगवान का और लुप्त हुए तो क्यों तो फिर भगवान दिखे तो नहीं लेकिन भगवान की आवाज आई कि अभी भी आपके हृदय में कुछ बहुत ही इच्छाएं मेटीरियल इंटेंस आ जाए इसलिए आप अभी कभी देख पाओगे इस मन थोड़ा सा अपनी कृपा कर दीजिए, इसको बढ़ाओ। तो ईगरनेस बढ़ाने को बोला भगवान ने, कहा कि अगर तुम मेरे प्रति मुझसे आकर्षित होकर मेरी भक्ति के लिए अपनी ईगरनेस बढ़ाओगे, लॉलेम बढ़ाओगे, इच्छा को बढ़ाओगे, तो जितनी तेजी से इच्छाएं बढ़ेंगी, कौन सी इच्छाएं भगवान को प्राप्त करने की। तो हमारा जो पापों का पहाड़ है, या इच्छाओं भौतिक इच्छाओं का पहाड़ है, या जो कर्म बंधन का है, गलत कर्म और अच्छे कर्म का बैंक अकाउंट, तो वो पहाड़ जो है हमारी भक्ति की इच्छा को देखकर जितनी तेजी से बढ़ेगी, वो उतनी तेजी से पहाड़ छोटा छोटा होकर खत्म होगा। ठीक है, ये तराजू होता ना, तराजू में अगर एक तरफ का पल्ला ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे चला जाता है। आप इच्छाएं कम करो, आध्यात्मिक इच्छाएं भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा कम करो, आपकी भौतिक इच्छा बढ़ जाएगी, अचानक ही मटीरियल अटैचमेंट डिजायर्स पर होने शुरू हो। और आध्यात्मिक इच्छाएं करने शुरू करोगे, भक्तों का संग करना शुरू करोगे, ग्रंथ इत्यादि पढ़ना शुरू करोगे, लॉलेम दिखाओगे आगे बढ़ने का, तो अचानक ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अब ये अच्छा नहीं लगता, अब ये अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे रहना चाहिए, सुख आनंद याद। तो अच्छी दीपावली मनाने का प्रयास, और अच्छी दीपावली का मतलब ये है कि भगवान को समर्पित होने का प्रयास, उनकी शिक्षाओं को समर्पित होने का प्रयास, भगवत गीता भागवतम को पढ़ने का, ताकि हम लोग ये जो दीप है, भगवान कह रहे हैं ज्ञान दीप है ना भास होगा, अरे मैं दीप जलाऊंगा ना आपके हृदय में, ज्ञान का दीप, और ये ज्ञान का दीप ये बताएगा कि तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, मेरे पास क्या क्या है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग भगवान के आदि जो दीप रखते हैं, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे हृदय में वो ज्ञान का दीप जले जो कि कभी बुझेगा। हरे कृष्ण। किसी भी प्रश्न किया हम हमेशा ज्ञान में कैसे रहेंगे? ज्ञान में स्थित रहने के लिए जो व्यक्ति हमेशा ज्ञान में स्थित रहता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, क्योंकि उसके कर्म, उसकी क्रियाएं, उसकी सोच, हर चीज कृष्ण कॉन्शियस होती है। तो आप ये पूछ रहे कि हम शुद्ध भक्त कैसे बने, या फिर यूं कह सकते हैं इसको कि दूसरे शब्दों में कि जैसे ज्ञान का मतलब है प्रकाश, हमेशा प्रकाश में रहें ताकि हम सब चीज सही ढंग से देख सकें और उसके अकॉर्डिंगली कार्य कर सकें। तो ज्ञान में स्थित रहने के लिए सबसे पहले उस ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। ज्ञान को अर्जित करने का मतलब कि भगवत गीता भागवतम पढ़े, उसको जो ज्ञान मिलता है उसके नोट्स बनाएं, उसको बार बार मेमोराइज करें, दूसरा कथाओं का श्रवण करें, तीसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत ही अटेंटिवली करने का प्रयास करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान की संवेद शक्ति से है, तो संवेद शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति। तो जब कोई व्यक्ति हरि नाम लेता है तो उसके अंदर ज्ञान स्थिर होता जाता है, जो बोले और थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए, थोड़ा सा और इसको प्रयास में ले आए, अपने आप को आत्मा देखने के रूप में, ज्ञान है नहीं शरीर से मैं अलग हूं, तो मैं हमेशा अपने को शरीर से जब अलग मानूंगा तो शरीर की जो इच्छाएं हैं जो उसमें उत्पन्न हो रही हैं, जो उसका आकर्षण भौतिक आकर्षण से बढ़ रहा है, जब जब मैं अपने आप को प्रयास करूंगा शरीर अलग देखने का, तो मेरी ऑटोमेटिकली वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी जो शरीर का, लेकिन जो मन से प्रेरित हो रही है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं, आप सोल हैं, तो फिर आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, जो मन संतुष्ट होना चाह रहा है भौतिक सुखों से, तो हमें पता चल जाता है फिर कि ये जो भौतिक चीजें हैं मुझे जो आकर्षित कर रही हैं, अगर मैं इनको करता हूं ज्यादा तो ये मेरा पापों के बैंक अकाउंट को और बढ़ाएगा, और जितने अधिक पाप बढ़ेंगे या कर्म हम करेंगे इस देह से, सकाम कर्म है ना या विकर्म, तो ये मेरे कर्म बंधन का मुझे जो है फल भोगना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अपने को अलग देखना पड़ेगा, और अलग देखने का मतलब ये है कि अलग देखना मतलब कि शरीर से अलग हुए, लेकिन किस रूप में, दास के रूप में, आत्मा की जो टेंडेंसी है वो डार्क डार्क कर, तो मुझे सेवा करनी, शरीर को फिर भी एंगेज करना, तो उसी शरीर को उसी मन को भगवान में दे प्रयास कर अध्ययन का इन सब चीज़ों का, तो उसमें हमें लिखा तो हम लोग विशेष रूप से ध्यान में रखें। नए भक्तों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और तुरंत मंदिर में किसी भक्त के संरक्षण में आके भक्ति शुरू करनी चाहिए। ये नए भक्त को भी करना चाहिए, पुराने भक्तों को। तो इससे क्या होता है, वो जैसे जैसे बताएंगे आप कौन से क्या पढ़िए, आप कौन सा फैक्ट्री पसंद करिए, कैसे मोड रखिए, कैसे माला करिए, ये सब बताएंगे तो भक्ति बहुत तेजी से।
हाउ टू सर्व एट होम, मतलब घर पे रह के कैसे सर्व कर सकते हैं? यहाँ अगर आके सर्विस मिलता है अभी तो, और घर पे कुछ होता नहीं है, चैंटिंग एंड रीडिंग एंड एक्सप्लोर दैट।
घर में भक्तों को थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि भक्तों का संग नहीं होता, और खासकर जिनकी सर खोलने का मित्र नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि उसको घर पर भी बहुत अच्छी भक्ति परफॉर्म करते हैं, और कई बार उनको लगता है कि मंदिर आके थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग जो ये विधि विधान बताए गए हैं पंचांग भक्ति के, जी ने गुरु स्वामी जी शिक्षाओं को हमारे उसमें दिए हैं, मंगला आरती करना, सुबह जल्दी उठना, प्रतोगन बढ़ाना, भागवतम का निमित्त उसके अध्ययन करना, और भगवान की सेवा करना द्वितीय वर्ष, तो ये नियमित रूप से करें पंचांग भक्ति का। और अगर जब भी मंदिर आते हैं प्रयास करें ज्यादा दर्शन करें, सेवाएं करें, और घर में मंदिर को इतना सुंदर सजाएं कि उससे घर की सेवा में घर में भी सेवा करने का इंटरेस्ट बना रहे। और दूसरा, भक्तों के संग में रहें, खाली समय में सभी भक्तों से फोन पर बात कर सकते हैं, उनको घर में बुला सकते हैं, जैसे हम लोग कल महाराज के द्वारा कथा सुन रहे थे, मतलब जैसे सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि हर भक्तों को भी जानी चाहिए। तो जब हम भगवान के साथ पर्सनल उनकी सेवा कर रहे तो नाना प्रकार के डिशेज बनाकर भगवान के खिलाए, भक्तों को इन्वाइट करें, उनको खिलाएं। तो इस प्रकार हम लोग अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कितने पुरुष भक्तों को कुकिंग आती है हाथ में लगे? जिन्हें आती है भगवान के लिए भी बनाते हैं, वो हाथ खड़ा कर या धर्म पत्नी का साथ दे सके, तो सबको आना चाहिए। कल ही मालूम पड़ा है कि मुझे तो हलवा बनाना आता है और अब एक नई चीज सीखी है, तो कॉफी बोलते हैं, तो कॉफी नहीं है, आपको भी बता देगा, ट्राई करना चाहते हैं। दिवाली का उपहार हमारी तरफ से, हमने किसी के घर में गए थे तो उन भक्तों ने हमें जो है कहा हम आपको कॉफी पिलाते हैं, तो भक्त हमें मालूम है कॉफी तो नहीं पिलाएंगे, जैसे हर्बल टी है वैसा कुछ पिलाएंगे, तो अचानक जैसे लग रहा सब्जी बनने की खुशबू आ रही थी, ट्राई हो रहा है, और अचानक हमारे पास सामने कप में चाय जैसी चीज आ गई, और जब पी तो उसकी स्मेल भी कॉफी वाली थी और टेस्ट भी कॉफी वाला बहुत स्वादिष्ट। अब मालूम तो था कि कॉफी नहीं पिलाई होगी, बट फिर भी हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये कॉफी का तौड़ है। उन्होंने बताया कि हमने कैसे बनाई, जिस बर्तन में बनाते हैं उसको हमने चूल्हे पर रखा खाली बर्तन को, और अच्छी आंच पर उसको पहले तपाया बर्तन को हाई, और फिर सूखा धनिया होता ना गोल गोल, देखा तुम साबुत धनिया बोलते हैं, तो साबुत धनिया उन्होंने उसके अंदर डाल दिया और उसको हिलाया थोड़ा सा, तो वो पानी भी नहीं डालना, घी तेल कुछ नहीं डालना, तो वो ब्राउन हो जाता है धीरे धीरे, और उसमें फिर उन्होंने थोड़ी सी चीनी डाल दी तो मेल्ट हो गई और वापस में और ब्राउनिश हो गई, फिर उन्होंने इसमें दूध डाल दिया और दूध डालते ही इसका रंग कैसा हो गया, जाए जैसे पपी डाल गया, और उसको हिला करें ताकि जो नीचे लगा वो प्रॉपरली हट जाए, और फिर छान कर भगवान को ऑफर करके और वो बहुत स्वादिष्ट था। मतलब उसको पीकर आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ ऐसा चीज है। तो आप सब लोग आज घर में जाकर ट्राई कीजिए, एक दो के बाद जो है बहुत अच्छी बनाने लगेंगे आप। तो अगर कभी घर में कोई मेहमान आए तो उनको भी इसको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। हरे कृष्ण। इसी से आपकी चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाएगी और आप चार नियमों का अच्छे से पालन करेंगे और जल्दी से दीक्षा दिलाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि में भागवतम जी हरे कृष्ण।